हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आरव को आयु से बात करनी थी, इसलिए उसने युवानी के जरिए उसे कॉल करवाया। बातों ही बातों में आरव को पता चला कि आयु अगले एक दो दिनों तक ऑफिस नहीं आएगी। हालांकि आयु ने उसे ठीक से ये नहीं बताया कि वो कितने दिनों के लिए छुट्टी ले रही है। आयु से बात करने के बाद आरव को नींद आ गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे पहले ही उठने में देर हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हुआ। आरव कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कल रात को जब वो घर आया था तब भी माहिरा सो रही थी और अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो घर पर नहीं है। माही, माही, तुम कहाँ हो? आरव माहिरा को आवाज लगाते हुए उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि माहिरा अभी तक सो रही थी। माहिरा को देर तक सोने की आदत नहीं थी। आरव के साथ ऑफिस जाने के लिए वो भी जल्दी उठकर तैयार हो जाया करती थी। आज उसे लेट तक सोता देखकर आरव थोड़ा हैरान हुआ। आरव माहिरा के पास आया और उसकी ब्लैंकेट उठाते हुए बोला, आर यू ऑल राइट माही? रात को भी मेरे आने से पहले सो गई थी और अब तक नहीं उठी हो। बोलते हुए आरव ने माहिरा के माथे पर हाथ लगाया तो वो बुखार से तप रहा था। माहिरा ने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, हाँ, थोड़ा कोल्ड हो गया था। गला बैठने की वजह से माहिरा की आवाज भारी हो गई थी। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए माही, मैं कुछ दिनों के लिए घर पर क्या नहीं आया, तुम तो बिल्कुल बेपरवाह हो गई। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे अपने आसपास बीमार इंसान अच्छे नहीं लगते हैं, आरव ने थोड़ा सख्ती से कहा। उसे माहिरा की परवाह हो रही थी। अपनी मर्जी से कौन बीमार पड़ता है आरव? खैर छोड़ो, तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए हो क्या? क्या आज तुम मेरे साथ रुक सकते हो? बीमार आदमी को ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, माहिरा ने भावुक होकर कहा। आरव ने गहरी सांस ली और फिर कुछ पल रुककर बोला, अगर जरूरी नहीं होता तो जरूर रुक जाता। आई एम रियली सॉरी माही, मैं आज नहीं रुक पाऊंगा। मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, वो आकर तुम्हें चेक कर लेगा। आरव के मना करने पर माहिरा का मुंह उतर गया। उसने नामे सिर हिलाकर कहा, रहने दो आरव, मैं खुद देख लूंगी। बोझ बन गई हूँ ना अब मैं तुम्हारे ऊपर, ऊपर से तुम्हारी शादी भी हो गई है। आज नहीं तो कल तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ रहने को आएगी ही, मैं कहाँ जाऊंगी तब आरव? तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। हमारे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में काफी लोगों को पता है, अब तो मुझे अच्छा लड़का भी नहीं मिलेगा। माहिरा के इमोशनल होने पर आरव ने उसका हाथ पकड़ा और काफी नरम लहजे में कहा, माही, तुम्हारी तबीयत खराब है, इस वजह से तुम ओवरथिंकिंग कर रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और आयु डिवोर्स लेने वाले हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हमारी शादी का क्या आरव? क्या हमेशा उम्र भर हम ऐसे ही बिना किसी रिश्ते के एक साथ एक घर में रहते रहेंगे? आरव, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे तो टाइम ले लो पर प्लीज कुछ तो सोचो। माहिरा ने अपनी बीमारी के बहाने आरव के सामने अपने दिल की बात कह ही दी थी। माहिरा जानती थी कि उसके बीमार होने के चलते आरव उसे कुछ कह भी नहीं पाएगा। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, आरव ने जवाब दिया। आरव की तरफ से पॉजिटिव साइन मिलते ही माहिरा ने अपना सर उसकी गोद में रख लिया। माहिरा ने आरव के चेहरे की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच आरव, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा ठीक है, अब तुम बेवजह के ख्याल अपने दिल में मत लेकर आओ। मैं ज्यादा देर तुम्हारे पास नहीं रुक पाऊंगा, पर डॉक्टर आने तक यहीं हूँ। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लेकर आता हूँ। आरव ने माहिरा का सिर आराम से तकिए पर टिकाते हुए कहा। माहिरा ने उसे धीरे से थैंक्स बोला। आरव माहिरा के कमरे से बाहर आ गया था। माहिरा के चेहरे पर स्माइल थी। एक तरफ जहां उसके दिल में आयु घर करने लगी थी तो वहीं वो माहिरा को भी अनदेखा नहीं कर सकता था। आरव ने मन ही मन कहा, माही का कहना भी गलत नहीं है, हर इंसान की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। माहिरा को साथ रखने के चक्कर में मैंने हमारे रिलेशन के बारे में सबको बता दिया था ताकि कल को कोई उस पर उंगली न उठाए। मुझे क्या पता था कि मेरी ऐसे अचानक शादी हो जाएगी। अगर आयु मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो मुझे माहिरा और अपने रिश्ते को एक नाम देना ही होगा। अकेले आयु ही हमारी शादी की वजह से परेशान नहीं है, माहिरा भी सफ़र कर रही है, वो भी बीमार हो जाएगी, ये तो मैंने सोचा तक नहीं था। माहिरा की बीमारी का कारण आरव खुद को मान रहा था। माहिरा की परवाह करते हुए आरव उसके लिए सूप बनाने के लिए किचन में आ गया था, तो वहीं दूसरी तरफ आयु लुधियाना जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मंथन और आयु इस वक्त साक्षी के सामने खड़े हुए थे और साक्षी आयु को भर भर के इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। देखो आयु, अपनी हेल्थ को बिल्कुल अनदेखा मत करना और मेडिसिन्स टाइम पर लेना। वैसे तो मैंने तारा आंटी को सब कुछ बता दिया है, पर हो सके उतना स्ट्रेस से दूर रहना, साक्षी ने उसे समझाते हुए कहा। दीदी, आपने मॉम को क्यों बताया? अब वो 24 घंटे आगे पीछे घूमेंगी, आयु ने मुंह बनाकर जवाब दिया। मंथन हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ दीदी बता दिया, वरना ये तो मेरी सुनने वाली ही नहीं थी। चलिए अब हम चलते हैं, आप अपना और टिया का ध्यान रखना। साक्षी को बाय बोलने के बाद मंथन और आयु चंडीगढ़ के लिए निकल गए थे। सुबह के लगभग 12 बजे के करीब वो ओबेरॉय मैंशन के अंदर थे। मंथन आयु की फैमिली से मिल चुका था, लेकिन आज पहली बार वो उसके घर पर आया था। हालांकि ओबेरॉय मैंशन की तस्वीरें पहले भी काफी वायरल हो चुकी थीं, पर आज मंथन ने उसे अपनी आंखों से देखा था। आयु का घर बिल्कुल किसी महल की तरह था। मंथन ने आयु की तरफ देखा और उसे परेशान करने के लिए कहा, तुम्हारा घर बिल्कुल किसी शाही महल की तरह है और तुम वहाँ की प्रिंसेस। आज फिर से मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों चंडीगढ़ में उस छोटे से फ्लैट के अंदर रहती हो? तुम चाहो तो चंडीगढ़ के सबसे अच्छा घर खरीद सकती हो। जरूर खरीदूंगी एक दिन, लेकिन अपने पैसों से, आयु ने मुस्कुरा कर कहा। फिर उसने मंथन का हाथ पकड़कर आगे कहा, तुम्हारे लिए वो एक चंडीगढ़ का छोटा सा फ्लैट होगा, लेकिन वहाँ तुम और साक्षी दीदी मेरे साथ रहते हो। मंथन, आज तक मुझे इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं समझता जितना तुम समझते हो। प्यार करने से पहले तुम मेरे दोस्त थे, तुम्हारे लिए मैं दुनिया की हर लग्जरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मंथन ने मुस्कुराते हुए आयु का हाथ ऊपर करके उस पर किस किया और बोला, मैं जानता हूँ और चिंता मत करो, तुम्हें लग्जरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम दोनों मेहनत करके अपनी लाइफ को अच्छा बना ही लेंगे, बस कुछ मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, उम्मीद है जल्द ही वो खत्म हो जाएं। मंथन का इशारा आरव और आयु की शादी की तरफ था। वो दोनों बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी तारा और जय जी बाहर आए। आयु ने उन्हें देखते ही जल्दी से मंथन का हाथ छोड़ दिया था। तारा ने आयु के पास आकर उसे अपने सीने से लगाया और सहलाते हुए कहा, न जाने कब तुम अपने दिल की बात हमें बताना सीखोगी, कितनी कमज़ोर हो गई हो। साक्षी ने कहा कि तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं बेटा? दूर रहने चली गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि पराया कर दोगी। तारा ने आयु से शिकायतें करने शुरू कर दी थीं, आयु बस चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। जय जी आयु से गले लगे और बोले, तारा आप फिर शुरू हो गई, बच्ची को घर के अंदर कदम तो रखने दो, ये शिकायतें बाद में भी लगाई जा सकती हैं।
तारा को चुप करवाने के बाद जय जी ने आयु के गाल को सहलाते हुए पूछा, वैसे तो मैंने तुम्हारी मॉम को चुप करवा दिया है, लेकिन काफी हद तक उनकी शिकायतें सही हैं। दूर रहने लगी हो तो सच में हमें पराया कर दिया है, किसी बात के बारे में बताती ही नहीं हो। अब आ गई हूँ ना तो सारी बातें खुलकर बताऊंगी, आयु ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आयु के बाद जय जी ने मंथन की तरफ देख कर कहा, थैंक यू सो मच बेटा, हमेशा हमारी बेटी का ध्यान रखने के लिए, ये सच में बहुत लापरवाह है। हमें तो लगता ही नहीं था कि अकेले रह भी पाएगी, लेकिन साक्षी और तुमने बहुत ख्याल रखा है इसका। प्लीज अंकल थैंक यू मत कहिए, आयु मेरी फैमिली है, उसका ख्याल रखकर मुझे अच्छा लगता है, मंथन ने जवाब दिया और फिर तारा और जय के पैर छुए। उसके बाद वो सब अंदर आ गए थे जहाँ रुद्र और सिमरन उनका वेट कर रहे थे। आयु जाते ही प्यार से उनके गले लगी। आप सब लोग मेरे लिए अपना काम छोड़कर घर पर बैठे हो? आयु ने उन सब की तरफ देखकर पूछा। उसकी फैमिली में जय जी से लेकर सिमरन तक ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में काम करती थीं और आज बाकी सब आयु के लिए घर पर थे। आयु को बहुत स्पेशल फील हो रहा था। ऑफ कोर्स, आखिर तुम इतने टाइम बाद घर आई हो, पूरे टाइम हम घर पर नहीं रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुद्र ने जवाब दिया। मंथन ने आज एक बिजनेस फैमिली को करीब से महसूस किया था, जहां काम के चक्कर में कई बार काफी चीज छूट जाती थी। आयु आज पूरे 2 साल बाद घर आई थी, पर उनमें से किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसके साथ पूरा दिन बिता सके। अब मंथन को आयु के अकेलेपन का कारण समझ आ रहा था, साथ ही ये भी कि वो अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहना चाहती होगी। आयु एक इमोशनल लड़की थी, आयु को इससे कोई शिकायत नहीं थी, उसने हमेशा से ऐसा ही माहौल देखा था। बाकी सब तो ठीक है, पर अनु कहाँ है? मुझे लगा वो थोड़ा टाइम तो मेरे साथ बिताएगी, आयु ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो बस अभी आ रही होगी अनु, उसे थोड़ा काम था, अपना काम निपटाने के बाद घर आती होगी, तब तक चलो साथ में लंच करते हैं, सिमरन ने बताया। आयु खुश थी कि कम से कम अनुष्का तो उसके साथ रहने के लिए आ रही थी। खाना खाते हुए वो आपस में बात कर रहे थे, मंथन उन सब के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा था। उनका लंच होते ही ओबेरॉय फैमिली ऑफिस के लिए निकल गई थी, तो वहीं उनके जाते ही अनुष्का आ गई थी। अनुष्का को मंथन ने पहली बार आरव के घर पर देखा था। वो हूबहू आयु की तरह लगती थी। आयु को देखते अनुष्का दौड़ते हुए आई और उसके गले लग गई थी। आई मिस यू सो मच लिटिल सिस्टर, अनुष्का ने मुस्कुरा कर कहा। सिर्फ एक मिनट छोटी हूँ, उसमें भी लिटिल सिस्टर क्यों बुलाती हो तुम मुझे? वेरी बैड, हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करती हो, आयु ने मुंह बनाकर कहा और फिर अनु से अलग हो गई। क्योंकि तुम बच्चों की तरह बिहेव करती हो, मुझे तुम्हें पैम्पर करना अच्छा लगता है, अनु ने उसके नाक को हल्का सा खींचते हुए कहा। आयु का बिहेवियर थोड़ा इमैच्योर था, वहीं अनु काफी मैच्योर थी। मंथन अनुष्का को गौर से देख रहा था। उसने अनुष्का से कहा, अगर तुम लोगों का लुक अलग नहीं होता तो सच में मुझे पता नहीं चलता कि आयु कौन है और अनु कौन। बचपन में तुम्हारे घर वाले तो कन्फ्यूज हो जाते होंगे ना? नहीं, वो कन्फ्यूज नहीं होते थे, अचानक आयु ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। अनुष्का ने आयु का हाथ पकड़ा और सहलाते हुए कहा, अब तक उस बात को लेकर नाराज हो? आई नो उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर उसका एक कारण था, तुम्हें अब समझ जाना चाहिए। मैं खुद को बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ अनु, पर तभी उन्हें मुझसे प्यार नहीं था और आज भी नहीं है। मॉम को मौका नहीं मिला, वरना वो मुझे पक्का फोर्स करने की कोशिश करती कि मुझे आरव के साथ रहना चाहिए। हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि मुझे उनके साथ रहना चाहिए, जबकि सच ये है कि उन्होंने कभी मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहा। आयु ने भारी आवाज में कहा, उसकी आंखें नम होने लगी थी। वो रोते हुए अपने कमरे में दौड़कर चली गई थी। आज तक मंथन इस बात को नहीं जानता था कि आयु अपनी फैमिली से इतना कटा हुआ क्यों रहती है। उसने अनुष्का की तरफ देखा, जो उदास निगाहों से आयु की तरफ देख रही थी। मंथन आयु से पूछता तो वो उसे इस बारे में कभी नहीं बताती। अब अनुष्का ही थी जो आयु की नाराजगी के पीछे का कारण बता सकती थी।